मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 17 सितंबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम आइए किसी एक व्यक्ति के जीवन की कुछ बहुत ही खूबसूरत झलकियों को देखते हैं। जी हां, झलकियों को। यह व्यक्ति अद्भुत व्यक्ति है, अद्भुत, और मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी आपको इनकी जीवनी पढ़ने को मिले तो आप निश्चित रूप से पढ़िए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जीवनी हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में तो है ही। डेफिनेटली आप इनका नाम जानना चाहेंगे और इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। ये हैं दुनिया के, कभी ये दूसरे नंबर के धनी व्यक्ति हो जाते हैं, कभी इनका स्थान तीसरे नंबर पर हो जाता है, और नाम आप समझ गए होंगे। इनका नाम है वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट, और सबसे बड़ी बात यह है कि वॉरेन बफेट की जो प्रतिष्ठा है, जो प्रसिद्धि है, वो धनी होने के कारण उतनी नहीं है जितनी कि इनके व्यवहार के कारण है, जितनी इनकी फिलॉसफी के कारण है, जितना इनके, यूं कह लीजिए कि जो रहन सहन का तौर तरीका है, उसके कारण है। अब वॉरेन बफेट कुल मिलाकर के सप्ताह में या महीने में एक दिन एक डिनर आयोजित करते हैं। वो पेड होता है, याद रखिए, फ्री डिनर नहीं होता, उसमें आपको भुगतान करके जाना होता है, और अमेरिका में यही सिस्टम है ज्यादातर। और उसमें वो युवाओं से मिलते हैं, कॉलेज और जो इस कॉलेज के जो युवा होते हैं, और उनसे फिर मैनेजमेंट के बारे में, उद्योगों के बारे में, इन सब के बारे में बातें करते हैं, और भी फ्री भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल, लेकिन वो एक उनका एक प्रोग्राम है जो फिक्स्ड प्रोग्राम है। और अभी आपने सुना होगा कि जो जैक मा है, जो चीन के बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, अलीबाबा, उसके जो मालिक हैं, उन्होंने भी अब अपने काम धाम से रिटायरमेंट ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि अब मैं पढ़ाऊंगा, मैं शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा। कितनी खूबसूरत बात है कि जो कुछ भी आपने अर्जित किया है, जो भी आपके सफलता के सूत्र रहे हैं, अब आप उन्हें दुनिया को देकर, आने वाली पीढ़ी को देकर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन और क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उस वॉरेन बफेट के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो आज दुनिया के सफलतम व्यक्तियों में से हैं, हर दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, व्यक्तित्व की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, बहुत ही सम्मानित रूप से याद किए जाते हैं। मतलब याद किए जाते उस रूप में नहीं, अभी भी वे हैं, राइट? आइए कुछ बातें हम इनकी देखते हैं, जिसे मैंने कहा झलकियां, और ये झलकियां केवल सुनिएगा मत, सुनिएगा भर मत, इनको जेहन में रखिएगा और गुनिएगा भी, यानी कि इन पर थोड़ा सा मनन कीजिएगा कि यार इतना बड़ा आदमी और इस तरीके का है। मैं रिपीट कर रहा हूं, इतना बड़ा आदमी और इस तरीके का है, और वो भी अमेरिका में रहने वाला आदमी, क्योंकि वेस्ट की फिलॉसफी है, और हमें लगता है कि नहीं, वेस्ट की फिलॉसफी कुछ विचित्र किस्म की फिलॉसफी है, वो भारत से अलग है। लेकिन यहां आप जरा सा मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वो भारत से अलग है, या क्या सच में हमारे भारत में इस तरह का कोई व्यक्तित्व है। धनियों में मैं बात कर रहा हूं, धनी लोगों में क्या इस तरह का कोई व्यक्तित्व है। फिर इस पर भी आप विचार कीजिएगा कि इस तरह का व्यक्तित्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस तरह के व्यक्तित्व होने का क्या लाभ है, इन सब पर आप विचार कीजिएगा। मैं तो आपको, आपके सामने बस कुछ झलकियां प्रस्तुत कर रहा हूं, कुछ झलकियों की ओर ले जा रहा हूं, राइट? तो आइए कुछ झलकियां देखते हैं, और सच में ऐसी झलकियां हैं कि जिन पर शायद ही आप विश्वास करें, शायद ही विश्वास करें कि एक व्यक्ति कहां से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है और कहां पहुंच जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी क्या रहती है, इसे देखिए। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि वॉरेन बफेट ने, यह सीएनबीसी चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया था, उसमें से कुछ लिए गए पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीदा, और उन्हें लगता है अभी भी लगता है कि यह बहुत पहले शुरू कर देना चाहिए था। वह क्या खूबसूरत बात है, 11 साल में सोचिए कि वो व्यक्ति शेयर खरीद रहा है। और वॉरेन बफे ने सबसे ज्यादा जो धन कमाया है वो शेयर मार्केट से कमाया है, सबसे ज्यादा। और शेयर मार्केट के तो ये व्यक्ति एक जादूगर माने जाते हैं, जो कंपनी डूबने वाली है, जिनके शेयर की कोई वक्त नहीं है, स्टडी करके वो शेयर खरीदते थे और फिर उसमें कई गुना कमाते थे। 11 साल की उम्र में खरीद रहे हैं और इसके बावजूद उन्हें लग रहा है कि यार ये काम बहुत पहले से हो जाना चाहिए, यानी देरी कर दी। सोच रहे हैं, देखिए, सोच करके देखिए इस पर। दूसरा पॉइंट है कि अखबार बेच बेच कर उन्होंने 14 साल की उम्र में एक छोटा सा खेत खरीदा, अखबार बेच बेच कर। और मैं यहां ऐड करना चाहूंगा कि उस समय कोका कोला के ऊपर की जो होती है ना, जिसमें कार्क जो होता है, जिससे बोतल बंद होती है, टीन की होती है, आप देखते हैं फट से खोल देते हैं, ये उन्हें भी इकट्ठा किया करते थे, वो कार्क इकट्ठा करते थे, इकट्ठा कर करके फिर उन्हें भी बेचा करते थे। ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। 14 साल की उम्र में एक छोटा सा खेत खरीदा, कुछ इसी तरह का थॉमस अल्वा एडिसन ने भी किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब इसको ध्यान से देखिएगा, वे अभी भी ओमाहा के बीचों बीच स्थित अपने 3 बेडरूम वाले मकान में रहते हैं। 50 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब उन्होंने यह मकान खरीदा था। बगैर चार दीवारी वाले इस मकान में उनके अनुसार वह सब मौजूद है जिसकी उन्हें जरूरत है। जब आप उस मकान में जाएंगे तो कहा जाता है कि बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि किसी मिडिल क्लास के आदमी का मकान है, कोई तामझाम नहीं, कोई शान शौकत नहीं, चारों तरफ फेंसिंग तक नहीं है, सोचिए। और वो कहते हैं कि मुझे जरूरत ही नहीं है, यहां सब कुछ वह है जो मेरी जरूरतें हैं, मैं क्यों फालतू के इसको तोड़ फोड़ करके और 10 मंजिला बनाऊं और फलाना बनाऊं वो बनाऊं। सोचो उस आदमी की सोच देखिए। और ये कहने वाला जो व्यक्ति है, जो 50 साल पुराने मकान में रह रहा है, सोचिए वो दुनिया का सेकेंड रिचेस्ट या थर्ड रिचेस्ट पर्सन है, राइट। नेक्स्ट देखिए, उससे भी बड़ी बात देखिए, आज उनकी उम्र कितनी हो गई है, उन्होंने कोई ड्राइवर नहीं रखा हुआ है, कोई ड्राइवर नहीं है, वे अपनी कार खुद चलाते हैं, उन्होंने कोई सुरक्षा गार्ड भी नहीं रखा हुआ है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, उनको किसी का भय नहीं है, किसी का डर नहीं है। सीधी सी बात है कि मुझे कोई क्यों मारेगा, मैं किसका क्या ले रहा हूं कि कोई मुझे मारेगा। देख रहे हैं उनकी अभयता देखिए, उनकी निर्भयता देखिए, और जीवन जीने का अंदाज देखिए। और इससे भी बड़ी बात कि वे दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट जेट कंपनी के मालिक है, जो विमान बनाती है, जेट विमान। वे दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट जेट कंपनी के मालिक हैं, लेकिन वे कभी प्राइवेट जेट से सफर नहीं करते, कभी नहीं। सोच करके देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि उनकी कंपनी वर्कशायर हेथवे के पास, उनकी बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत ही फेमस कंपनी है, 63 कंपनियों का मालिकाना हक है, राइट। पर बफेट उनके अधिकारियों को साल भर में केवल एक बार चिट्ठी लिखते हैं, और वह भी साल भर का टारगेट देने के लिए कि इस साल आपका यह टारगेट है। वह न तो फिर इसके बाद उन्हें कभी नियमित रूप से फोन करते हैं और न ही मीटिंग करते हैं, बस एक बार चिट्ठी लिख दी, बात खत्म। कोई अपनी कंपनी को इस तरीके से चला सकता है? लेकिन वो एक सिस्टम आपको दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से काम किए जाने चाहिए, या चलिए चाहिए को हम छोड़ दें तो कम से कम ये तो बता रहे हैं कि इस तरीके से भी काम किए जा सकते हैं और आप इतनी बड़ी सफलता पा सकते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर अगर कोई यह बात कहे तो हमें यकीन कहां होता है, लगता है यार ये परिकथाएं हैं क्या, ये कहीं सपने में बात कर रहा है क्या, बड़बड़ा रहा है क्या। लेकिन उन्होंने करके दिखाया है, सपनों को सच करके दिखाया है, और मैनेजमेंट के और जीवन जीने के अंदाज के बिल्कुल नए स्वरूप से हमें परिचित कराया है। और देखिए, वे हाई सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते, समय मिलने पर घर में टीवी देखते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं, पॉपकॉर्न उनका सबसे शौक है। तीसरा पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा कि वो पढ़ते हैं, पढ़ते खूब हैं, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैंने उनकी जीवनी पढ़ी हुई है। वो पढ़ते खूब हैं, और जब भी नौजवान उनसे मिलते हैं और उनकी सफलता का राज पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। देखिए वो जो पढ़ने की बात कहते हैं, चूंकि उनसे जो मिलने वाले ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, जो यंग लोग होते हैं, वो बेसिकली शेयर मार्केट के बारे में उनसे जानना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, शेयर मार्केट के जादूगर माने जाते हैं। तो जब वो कहते हैं कि खूब पढ़ो, तो इसका मतलब ही है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक कंपनियों के परफॉर्मेंस के बारे में नहीं जानेंगे, आप वर्ल्ड सिनेरियो को नहीं समझ पाएंगे, और वर्ल्ड सिनेरियो का पूरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो उस संदर्भ में वह कहते हैं कि खूब पढ़ो, राइट। तो खूब पढ़ते भी हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट है जिस पर शायद आप सब यकीन न करें, और यकीन नहीं करेंगे मुझे मालूम है। इसको अपने ऊपर ढाल के देखिएगा, और जो मैं अब बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये दुनिया का रिचेस्ट सेकेंड थर्ड रिचेस्ट पर्सन, इसको कभी मत भूलिएगा, जो इतनी सारी कंपनियां जिसकी हैं, ये नहीं कि एक ही कंपनी उनके पास है, इतनी सारी कंपनियों को जो आदमी मैनेज कर रहा है, उसका ये अंदाज देखिए और अपने ऊपर ढालिएगा। वे अपने साथ कभी सेल फोन नहीं रखते, न ही उनके डेस्क पर कंप्यूटर होता है। मैंने कहा था कि आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, और शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, ये किसी लेखक के भी शब्द नहीं है जिसने किताब में लिख दिया है, ये वॉरेन बफे का के अपने शब्द हैं जो उन्होंने सीएनबीसी के साथ इंटरव्यू में कहा था। इसलिए मित्रों, इस पर अविश्वास करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी के साथ अब इस अविश्वसनीय व्यक्ति को सच में सलाम करते हुए अब मैं आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को यहीं विराम देना चाहूंगा। नमस्कार।